स्कंद 4 अध्याय 25 श्लोक संख्या 47 से हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। खद्योता अविर्मुखी च प्राक् खाद्योता अविर्मुखी च प्राग द्वारो एकत्र निर्मिते द्वारो एकत्र निर्मिते। विभ्राजितं जनपदं जाति विभ्राजितं जनपदं जाति। ताभ्यां धूमत याति ताभ्यां धूमत सखा याति ताभ्यां धूमत सखा। खाद्योता आविर्मुखी च प्राग द्वारो एकत्र निर्मिते विभ्राजितिं जनपदं याति ताभ्यां द्युमत्सखा। अनुवाद माफ कीजिएगा शब्दार्थ खद्योता नामक आविर्मुखी नामक च भी प्राक पूर्व दिशा की ओर द्वारो दो द्वार एकत्र एक स्थान पर निर्मिते बनाए गए थे। विभ्राजित नामक जनपदं नगरी याति जाता था ताभ्याम उनसे द्युमान नामक सखा अपने मित्र के साथ। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की खद्योता तथा आविर्मुखी नामक नाम के दो द्वार पूर्व की ओर स्थित थे, किंतु वे दोनों एक स्थान पर ही बनाए गए थे। राजा इन दोनों द्वारों से होकर विभ्राजित नामक नगरी को अपने मित्र जुम्मान के साथ जाया करता था। अनुवाद कृपया दोहराइए। खद्योता तथा आविर्मुखी नाम के दो द्वार पूर्व की ओर स्थित थे, किंतु वे दोनों एक स्थान पर ही बनाए गए थे। राजा इन दोनों द्वारों से होकर विभ्राजित नामक नगरी को अपने मित्र धूमान के साथ जाया करता था। तात्पर्य खद्योता तथा आविर्मुखी ये दोनों नाम जुगनू तथा प्रकाश के स्तंभ के सूचक हैं। इससे सूचित होता है कि दोनों आंखों में से बाई आंख की देखने की शक्ति कम है। यद्यपि दोनों आंखें एक ही स्थान पर स्थित हैं, किंतु दाई आंख अधिक देखती है और बाई कम। राजा अथवा जीव इन दोनों द्वारों का उपयोग वस्तुओं को ठीक ढंग से देखने के लिए करता है, किंतु वह उन्हें तब तक ठीक से नहीं देख सकता जब तक उसके साथ द्युमान नामक मित्र ना हो। यह मित्र सूर्य है। यद्यपि दोनों आंखें एक स्थान पर स्थित हैं, किंतु वे सूर्य के बिना देख नहीं सकती। विभ्राजितम जनपदम, यदि कोई कुछ स्पष्ट देखना चाहता है विभ्राजितम, तो उसे दोनों आंखों से देखना चाहिए तथा उनके मित्र सूर्य की सहायता लेनी चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति इस शरीर का राजा है, क्योंकि वह अपनी इच्छा अनुसार विभिन्न द्वारों का उपयोग करता है। यद्यपि उसे अपने देखने तथा सुनने की शक्ति पर गर्व रहता है, किंतु वह प्रकृति की सहायता पर बहुत कुछ आश्रित है। ओम ज्ञान तिमिरंदस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलम् श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सार्धजातं सहगण रघुनाथं वितन्तं सजीवं सावधेयतां सावधूतं परिजन सहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्रीराधा कांत नमस्तुते। तत्र कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणामामि हरि प्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये प्रसंग काफी समय से चल रहा है, पुरंजन उपाख्यान प्रसंग। आप सब सुन रहे होंगे, अब तो जल्दी ये प्रसंग समाप्त होने वाला है। कुछ तो कौन है फिर भी एक थोड़े से समय में इसके बारे में जो कहते हैं रिवाइज कर लेते हैं, क्या चल रहा है। प्राचीन भरित एक राजा हैं, उनके पुत्र प्रचेता जो हैं वो 10,000 साल के लिए तपस्या करने चले गए भगवान शिव जी से शिक्षा प्राप्त करके और उनसे मंत्र प्राप्त करके दीक्षा भी प्राप्त करके। और अब प्राचीन भरित सकाम कर्म या फ्रूटिव एक्टिविटीज इंग्लिश में लिखा है। कुछ इंद्रिय तृप्ति की इच्छा रखते हुए कुछ यज्ञों को करना चाहता है या कर रहा था, परंतु भगवान कृष्ण के शुद्ध भक्त जब देखते हैं या उनकी अहेतु की कृपा होती है, जब जैसे एक बार श्रील प्रभुपाद जी, आप सबको पता होगा, लीला मृत में विदेश में प्रचार कर रहे थे, तो उसे उनके शिष्यों ने बोला, प्रभुपाद जी उन्होंने सुना भागवतम में कि किसी के काफी जब अच्छे कर्मों के फल या भक्तिमुखी कर्मों के फल एकत्रित होते हैं तब कोई भक्त उनके पास आता है उनकी भक्ति को पूरा करने के लिए। तो उन्होंने प्रभुपाद जी से बोला, प्रभुपाद जी हो सकता है हमने काफी भक्ति करी होगी पिछले जन्मों में या ये इस कारण आप हमारे पास आए। प्रभुपाद जी ने कहा, नहीं, दिस इज माई कॉजलेस मर्सी ऑन यू, दिस इज नो कॉज, इसका कोई कारण नहीं है। मतलब इससे शिक्षा क्या मिलती है कि क्या सीखना है हमने, कि जब कोई शुद्ध भक्त या कोई बहुत भक्ति में आगे बढ़े चढ़े बड़े भक्त जब हमारे पास आते हैं हमारे पास, तो कभी भी इसका क्रेडिट हमें नहीं लेना चाहिए कि हमने कुछ करा होगा, हमने गोवर्धन जी की परिक्रमा करी होगी तो अब ऐसा हमें हो रहा है। नहीं, अहेतु की कृपा होती है, ये जो उसके ऊपर कृपा हो रही है उसका ये समझावट होनी चाहिए, वरना अहंकार आ जाता कि मैंने कुछ करा। खैर, इसमें प्राचीन भरत के पास नारद जी आते हैं, और क्योंकि उसकी देखिए प्राचीन भरत बड़े ईमानदारी से ऑनेस्टी से बोलते हैं कि मेरी इंद्रिय तृप्ति करने की इच्छा है। ये एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण गुण है किसी भी शिष्य के लिए। अगर वो भक्ति में आगे बढ़ना चाहता है तो उसे सबसे पहले अपने गुरुजनों के प्रति, चाहे वो शिक्षा गुरु हो चाहे दीक्षा गुरु हो, उनके प्रति बहुत ईमानदार रहना पड़ेगा। ओपन हार्ट कहते हैं इसे इंग्लिश में, बिल्कुल हृदय खुला होना चाहिए उनके आगे। ये नहीं कि मन में कुछ और है, हम दिखा कुछ और हैं, इस तरह से अगर हम जाएंगे तो हमें लाभ नहीं मिलेगा पूरा। वो जो कृपा देना चाहते हैं जो भक्त लोग, वो देना चाहेंगे भी तो हम ग्रहण नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अभी हमारे हृदय में शुद्धिकरण नहीं हुआ या कम से कम ईमानदारी नहीं आई है। साफ बोल रहे हैं प्राचीन वर्ष, देखिए कितने उच्च स्तर के भक्त हैं, उनके पुत्रों ने शिव जी का दर्शन करा है, तो उनका क्या स्तर होगा। नारद जी फेस टू फेस है उनके साथ, बिल्कुल सामने। तो ये शिक्षा में देखनी चाहिए, कितनी ईमानदारी से बोल रहे हैं, मेरे मन में इच्छा है इंद्र तृप्ति का, मैं इंजॉय करना चाहता हूं, और इसमें कोई मतलब बहुत बड़ी गलती भी नहीं है। हम सब इस भौतिक शरीर में हैं, सबके पास सेंसेस हैं, इंद्रियां हैं, सबकी अलग अलग कंडीशंस हैं, लेकिन जब आप अपने गुरुजनों के आगे बिल्कुल साफ हृदय हो जाते तो वो उसके लिए रास्ता दिखाते हैं किस तरह से आप ये कार्य करते हुए भी भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं नारद मुनि जी डांटने लगे प्राचीन शिव को कि ये क्या तुम बेवकूफ हो, नहीं, जो भक्त होते हैं बहुत नम्र हृदय के होते हैं और उनकी दया कहते हैं कि भगवान से भी, वो जो भगवान से दया मिलती है उसको और बढ़ा चढ़ा के वो हम कंडीशन सोल्स के पास या हम जैसे भक्तों के पास या जो भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं उन तक लाते हैं कि हम इसको जो भगवान ने जो हमें दिया है हम अपनी स्थिति में उसको किस तरह से अपने जीवन में इस्तेमाल करें और फिर भक्ति में आगे बढ़े। केवल एक ही उद्देश्य होता है शुद्ध भक्तों का कि जो भी कंडीशन सोल है या जो इस भौतिक संसार में फंसी हुई आत्माएं हैं उनको किसी न किसी तरह भगवान के पास ले जाना, ये केन प्रकारेन कृष्ण भक्ति में लगा देना। तो ये हमें जब प्राचीन भरीषित ने बोला नारद मुनि जी को, नारद मुनि जी देखिए एक और अच्छा शुद्ध भक्त के गुणों को देखने का हमें या सुनने का अवसर मिलता है कि कितने बढ़िया तरीके से सीधे उसको नहीं बोल रहे कि ये गलत कार्य है, उसको उदाहरण उपाख्यान मतलब कहा जाता है, उसको उदाहरण देके समझा रहे हैं। और इसमें भी देखिए आंखों का वर्णन हुआ है, और मैं ये क्यों बोल रहा हूं क्योंकि इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट मुख्य बात है कि ये जो वैदिक शास्त्र हैं इनमें एक एक चीज को बहुत गहराई से समझाया गया है और बहुत ध्यान देके बताया जाता है। अभी हम गुरुकुल में एक चर्चा कर रहे थे, एक हमारे प्रभु जी हैं इंग्लैंड से हैं, काफी पुराने भक्त हैं, इंग्लिश में क्लास भी देते हैं, का नाम भूल रहा हूं मैं, मतलब काफी अच्छे उन्होंने पढ़ाई भी करी है इंग्लैंड में और काफी यूनिवर्सिटीज में प्रचार भी करते हैं। तो ऐसी जब वो हम गुरुकुल के टीचर्स को ट्रेनिंग देने आए थे कुछ समय के लिए, तो एक अध्यापक ने पूछ लिया जी कि भाई क्यों हम भगवद्गीता ही क्यों पढ़े, इतने सारे और भी तो हैं ग्रंथ, भाई क्यों ना हम, जब हमने आत्मा के बारे में समझना है तो और शास्त्रों में भी तो बताया गया, ऐसे नहीं कि भगवद्गीता में बताया गया, बाइबल में भी बताया गया है, कुरान में भी बताया गया है आत्मा के बारे में। उन्होंने बड़े एकदम से खुल के बोला कि जो इसकी मेरिट है भगवद्गीता की, ये हमारे शास्त्रों का जो स्तर है वो आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेगा। देखिए जैसे कि नारद मुनि जी ये बात कह रहे हैं, और आंखों का उदाहरण क्या दिया उन्होंने, खद्योता और अविर्मुखी, ये संस्कृत शब्द है। खद्योता का अर्थ होता है जुगनू, जुगनू आप समझते हैं ना, रात में थोड़ा थोड़ा ऐसे करता है, और अविर्मुखी प्रकाश, पूरा प्रकाश, मतलब उन्हें इस नारद मुनि जी को पूरा शरीर का विज्ञान के बारे में पता है कि कौन सी आंख कम देखती है और कौन सी आंख ज्यादा देखती है, मतलब ऐसे ही कोई नहीं उदाहरण दे दिया, मतलब इस बात को समझना चाहिए कि उन्हें संपूर्ण ज्ञान होता है और इस ज्ञान को हमारे तक कैसे पहुंचा रहे हैं, पुरंजन का उदाहरण देकर, या प्राचीन ब्रह्मर्षि जो राजा उनको समझाते हुए हमें समझा रहे हैं, हम जैसे जो कलयुग के जीव हैं। हमें लगता है कि कुछ लोग जो कुछ ज्यादा पढ़ लग जाते हैं कहते हैं नहीं शास्त्रों में तो ये सब क्या है, क्या शब्द आता है विशेष इंग्लिश में बोलते हैं उसको, हाँ मैथोलॉजी, धन्यवाद, थैंक यू, मैथोलॉजी कौन कहता है इसको, मैथोलॉजी दिखती है कि इतना बढ़िया वैज्ञानिक तरीके से समझा रहे हैं शरीर के बारे में और आंख के बारे में बता रहे हैं, आंखों का उदाहरण दे रहे हैं तो एक प्रॉपर शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, खद्योता और अविर्मुखी, वरना कुछ और भी शब्द बोल सकते थे नारद जी, नहीं बिल्कुल एग्जैक्ट वर्ड्स यूज कर रहे हैं। तो इस तरह से हमारा शास्त्रों पर विश्वास बढ़ना चाहिए कि शास्त्र जो कह रहे हैं 100% ठीक कह रहे हैं, हो सकता है हमारे किसी समय परिस्थिति काल के अनुसार हमें वो ठीक ना लगे, खासकर जब हम शास्त्रों में जैसे राधा गोविंद महाराज भी जब कथा करते हैं स्त्रियों के बारे में बात करते हैं तो कई बार जो बहुत ज्यादा आधुनिक स्त्रियां पढ़ी लिखी स्त्रियां उनको बात समझ में नहीं आती, क्या बात कर रहे हैं, ऐसे कैसे हो सकता है, स्त्री के चरित्र के बारे में स्त्री को किस तरह से व्यवहार करना चाहिए, तो ये बात मन में उतरती नहीं है, नहीं 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 विश्वास नहीं होता, नहीं नहीं ये तो पुरानी बातें हैं, आजकल तो कुछ और होना चाहिए, एडजस्ट करना चाहिए, नहीं 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 शास्त्रों को एडजस्ट नहीं कर सकते, उनको जीवन में उतारना है बस, मुश्किल तो होगी क्योंकि हमारे अंदर इतने कलमश हैं, शास्त्रों को जीवन में उतारने में परेशानी तो होगी, व्यक्ति को अगर हीरा बनना है तो उसके लिए प्रेशर तो झेलना पड़ेगा ना, अभी हमारा हृदय कोयले जैसा है, अगर वो हृदय जैसा बनना है उसको हीरे जैसा बनना है तो वो जो उसका प्रेशर होता है कोयले को हीरे बनाने में आप सबको पता है कितना प्रेशर लगता है उसमें, कितने आग से उसे गुजरना पड़ता है, कितनी अग्नि से उसे गुजरना पड़ता है, तो हमें भी वो, और यही हमारी साधना है। तो ये जब मैं पढ़ रहा था ये शास्त्र तो बड़ा अच्छा एक रियलाइजेशन आया, तो मैंने कहा सोचा शेयर करेंगे कि आज के इस कि किस तरह से प्राचीन भरिष्य बड़े ईमानदारी से अपने नारद जी गुरु के आगे ईमानदारी से बोल रहे हैं कि इस तरह से मेरी यह अवस्था है अभी, आप बताइए। जैसे ध्रुव महाराज जी, नारद मुनि जी ने कई बातें बोली, लेकिन ध्रुव महाराज कहते आप मुझे ये बताइए कि मुझे अपने पिता मां से भी बड़ा राज्य कैसे मिलेगा। बस सीधा बिल्कुल स्पष्ट, मेरी अभी इच्छा बताइए कैसे मिलेगा। नारद मुनि जी ने कहा ठीक है। नारद मुनि जी ने उनको रास्ता तो बताया, लेकिन रास्ता उन्हें पवित्र करने का बताया कि कैसे वो शुद्ध व्यक्ति तक पहुंचेंगे। शुद्ध भक्तों का यही कार्य होता है, लेकिन हमें उनके सामने बिल्कुल शत प्रतिशत खड़ा होना पड़ेगा। ये नहीं कि हम कुछ मन में कुछ और रखें और सामने कुछ और दिखाएं। खैर उनको पता चल जाता है, शुद्ध भक्त देख सकते हैं अंदर बाहर, लेकिन वो दयावश हमारी स्थिति के अनुसार फिर हमें बताते हैं कि ये करो, और फिर उसको बहुत ध्यानपूर्वक करना चाहिए। जब ध्रुव महाराज जी को बोला कि तो आप इस तरह करो, इस तरह से तपस्या करो, उन्होंने एज इट इज फॉलो करा। ये नहीं कि गुरु महाराज कुछ और कह रहे हैं कि हम कुछ और करेंगे। फिर जो हमारा जो पवित्रकरण है या जो हमारा प्यूरिफिकेशन है वो धीरे होगा। इसीलिए प्रभुपाद जी के तात्पर्य में जगह जगह पर बार बार ये बोलते हैं अंडर द गाइडेंस ऑफ प्योर डिवोटी और अंडर द गाइडेंस ऑफ ए स्पिरिचुअल मास्टर। भक्ति करने का मतलब ही यही है, वरना अपनी मर्जी से हम कुछ भी करते रहे और भक्ति दिखती है, वो एक्सटर्नली दिखेगी, लेकिन वो पवित्रकरण जो प्यूरिफिकेशन है वो नहीं होगा, क्योंकि हमने पहले ही आज्ञा को मानने की हमारी इच्छा नहीं है, या हमारा हृदय में कुछ और था और हम कुछ और दिखा रहे हैं। और वो जो काफी सारे उदाहरण ध्रुव महाराज का, और उसके बाद आप जिनको राम राम मरा मरा बोलने के लिए बोला गया था, वाल्मीकि जी बोलते मेरे से राम नहीं बोला जाएगा, सब बोल दिया ठीक है तुम मरा मरा बोलो। उन्होंने फॉलो करा इंस्ट्रक्शन, उनको यह भी डर था मेरे परिवार कैसे पलेगा। नारद जी ने कोई बात नहीं, उसकी चिंता मत करो। ये होता विश्वास। हम जब भी गुरु पूजा में गाते हैं तो हमें रिमाइंड करना चाहिए, अपने को याद दिलाना चाहिए कि श्री गुरु चरण रति क्या हुई है कि नहीं अभी तक। श्री गुरु चरण रति, रति मतलब विश्वास से भी ऊपर की चीज है। रति का मतलब उसके अलावा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। रति मतलब व्यक्ति का मन, हृदय, इंद्रियां सारी उसी में लगी रहती है कि वो जो जिस चीज में रति है। प्रभुपाद जी बहुत एग्जाम्पल उदाहरण देके समझाते थे कि कैसे जब कोई युवती युवक से सो कॉल्ड प्रेम में, जब वो दोनों एक दूसरे के प्रेम में होते हैं या एक दूसरे से आकर्षित होते हैं, तो उनमें रति होती है एक तरह से। स्त्री जो होती है या युवती जो होती है वो यही सोचती रहती है कि मैं उसको कैसे प्रसन्न करूंगी, या उसके लिए क्या लेके जाऊं, या कैसे करूं, उसको क्या पसंद है। और पुरुष जो होता है वो युवती के बारे में सोचता रहता है कि उसको क्या पसंद है, यही सोचते रहते हैं। रूपा जी एग्जाम्पल देते थे, कई बार दिया उन्होंने, कि इस तरह से रति होनी चाहिए। श्रील प्रभुपाद जी ने अपने उदाहरण जीवन में दिखाया। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी के जो आज्ञा जो उन्हें लगभग 40 साल पहले मिली थी, 23 साल के पिता प्रभुपाद जी 25 जब हुए, जब उन्हें प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने कहा आप पढ़े लिखे हैं, आपके पास जब भी धन हो तो पुस्तकों को अंग्रेजी में प्रकाशित कीजिए और पश्चिम देशों में प्रचार कीजिए। अभी मेडिटेट करते रहते थे, हमेशा यही सोचते रहते कैसे करूंगा कैसे करूंगा। विदेश जाने का मौका नहीं मिल रहा था तो भारत में ही लगे हुए थे प्रचार करने में। रूपा लीला में पढ़ा होगा आप सबने, कैसे दिल्ली में इसी महीनों में जून जुलाई में बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं और धूप के कारण उनको सनस्ट्रोक हो जाता है। क्यों कर रहे हैं वो, उनको क्या कुछ मिल रहा था बताइए, क्योंकि उनकी रति थी। श्री गुरु चरण गति यही से उत्तम गति। यहां यह बहुत महत्वपूर्ण संदेश मिलता है कि जब गुरुवर जब कोई आज्ञा देता है तो उसको बड़े ध्यान पूर्वक करना चाहिए। हो सकता है अभी रति ना हो, हमारे अनर्थ इतने ज्यादा हैं कि हम उस पर ध्यान नहीं दे पाते, कोशिश करते रहना चाहिए। इसलिए डेली प्रोग्राम में इसीलिए आना पड़ता है ना, हम डेली गाएंगे संसार दावानल शुरुआत करेंगे, फिर गाएंगे श्री गुरु चरण पद्म केवल भक्ति सिद्धा, तो रिमाइंडर आता रहेगा बार 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 बार, भागवतम सुनेंगे बार बार रिमाइंडर आएगा। इसीलिए इसको जीवन में उतारना पड़ेगा, कोशिश करनी पड़ेगी, जिसका नाम साधना है। तो इसमें फिर हम देखते हैं कि नारद मुनि जी किस तरह से पुरंजन का जो कि एक आत्मा है उसका उदाहरण देते हुए समझाते हैं कि वो कैसे आनंद की या खुश रहना चाहता है या आनंद लेना चाहता है, इंद्रियों का भोग करना चाहता है, तो वो किस तरह से उदाहरण देते हैं या बताते हैं कि एक शरीर है, आपने हम समझे सुना कैसे ये शरीर है, इसमें अलग अलग गुफाएं हैं, ये है वो है। इन सब बताने का क्या कारण है कि हमें समझना चाहिए कि अगर हम इंद्रियों को, इसमें एक बहुत मुख्य जब जो टर्निंग या जो कहते हैं कि जहां से दिशा बदलती है डिस्कशन की या नारद मुनि जी और प्राचीन परिषद में, एक श्लोक आता है श्लोक संख्या 20 है वो, उसमें कहते हैं कि उसमें पुरंजन को एकदम से एक स्त्री के दर्शन हुए जो बहुत सुंदर थी, फिर उसकी सुंदरता के बारे में बताया गया। तो वो एकदम से कैसे, जब व्यक्ति युवक होता है जैसे बच्चा होता है तो बच्चे के मन में कोई ऐसी इच्छा नहीं होती इंद्रिय तृप्ति करने की इच्छा, हाँ खेलना कूदना और थोड़ा बहुत बच्चे को, अगर प्रभुपाद जी एक हमारे पास प्रभुपाद जी ने गुरुकुल के ऊपर लेटर्स लिखे थे तो उसमें लिखा था कि एक जीव के लिए या एक बच्चे के लिए, और थोड़ा सा ग्रॉस रूप में, एक बच्चे को अगर सबसे खराब करने का तरीका क्या होता है एक माँ बाप के लिए, जब उसे इंद्रिय तृप्ति के साधन दे देता है। बच्चे को कोई जरूरत नहीं होती, बच्चे को बहुत ज्यादा खाने अच्छा खाने की कोई इच्छा नहीं होती, उसे पता भी नहीं होता, लेकिन हम बड़े जो उनके माता पिता है हम समझते हैं हम उसे होटल में ले जाएंगे तो बहुत खुश होगा, उसको नहीं होती क्योंकि उसके में अभी ये समझ आई नहीं, लेकिन हम उसे वो चीज दे के उसकी नाश कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर तृप्ति की भावना बढ़ जाती है। प्रभुपाद जी लेटर में क्लियरली लिखते हैं इंग्लिश में कि वी स्पॉइल चिल्ड्रन बाय गिविंग देम सेंस ग्रेटिफिकेशन। बच्चों को जितना हो सादे तरीके से, बिल्कुल मतलब सरल और क्या कहते हैं सिंपल एंड हाई लेवल, इस तरह से उनको सिखाया जा सकता है बच्चों को, जब तक वो युवक नहीं होता, जब तक उसमें ये इच्छा नहीं आती एकदम से काम इच्छा इंद्र तृप्ति की इच्छा। इसलिए बच्चों को नहीं देने चाहिए जल्दी, कोशिश करनी चाहिए उनको नहीं दिया जाए, लेकिन आजकल ऐसा एटमॉस्फेयर है कि बच्चे स्कूल में जाते हैं तो अपने दोस्तों के पास ये वो सब देखते हैं। इसलिए प्रभुपाद जी ने बोला भी कि आम जो स्कूल है जहां पे कृष्ण भावनामृत के बारे में नहीं समझाया जाता वो स्लॉटर हाउसेज है। स्लॉटर हाउसेज मतलब जहां मार दिया जाता है व्यक्ति को, वहां आत्मा का हनन हो जाता है। आत्मा का हनन मतलब आत्मा का जो प्राकृतिक जो नेचुरल कंडीशन है वो क्या है, सेवा करने का। जीवेर स्वरूप हो नित्यर कृष्णदास ऑल द टाइम। जैसे ही वो स्कूलों में जाते हैं वहां उनको ये सिखाया जाता है ये भी प्राप्त करो, आप ऐसा करोगे वो भी हो जाएगा, और फिर वो इंद्र तृप्ति में लग जाता है व्यक्ति, भूल जाता है। इसीलिए गुरुकुल खोलने की बहुत प्रभुपाद जी ने मतलब जरूरत समझी। एक जगह लिखते भी हैं ये दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट ऑफ इस्कॉन। क्लियरली प्रभुपाद लेटर लिखते हैं, उसमें लिखते हैं दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट ऑफ इस्कॉन। तो इसमें जब उसे इच्छा हो जाती है तो देखिए किस तरह से विज्ञान समझाया जा रहा है इस शरीर के बारे में, इस शरीर का विज्ञान है, साइंस है ये। उस स्त्री के साथ, वो स्त्री अलग नहीं है, उसके साथ क्या है, 10 उसके बताया गया दास है जो कि हमारी इंद्रियां ही हैं, इंद्रियों को दास बताया गया उस स्त्री के, कि उसके कहने पर चलते हैं, क्योंकि मन में अब काम की इच्छा आ गई है, तो वो इन दसों इंद्रियों से इसको पूरा करने का प्रयास करती है। और दस इंद्रियां अकेली नहीं है, उसने बताया गया उसके साथ उनके कई पति हैं, मतलब पत्नियां हैं, उनकी पत्नियां उन, जैसे आंख के बारे में यहां बताया गया। तो ऐसा नहीं है कि आंख किसी चीज को देख के संतुष्ट हो जाएगी फिर, नहीं, कोई भी इंद्रिय, केवल आंख नहीं, नाक, जीवा, कान, स्पर्श इंद्रिय, कोई भी इंद्रियों के कई कई पत्नियां हैं। कई बार व्यक्ति समझता है कि मैं इंद्रिय तृप्ति का सामान इकट्ठा कर लूंगा तो मैं बहुत, मतलब मैं संतुष्ट हो जाऊंगा, वो दिन कभी भी नहीं आएगा। इस शास्त्र के अनुसार वो दिन कभी भी नहीं आएगा, भूल जाइए। जो लोग ऐसा कहते कहते हैं कि नहीं नहीं मुझे अभी दो गाड़ी और ले लेना फिर मैं भक्ति करूंगा, कभी नहीं होगा। आपने आज तक देखा किसी को, किसी व्यक्ति के पास आज 10 लाख रुपए हैं और उसके पास 20 लाख आ गए या 1 करोड़ आ गए तो उसने भक्ति शुरू कर दी हो? कभी नहीं होता ऐसा, क्योंकि ये शरीर की बनावट ही ऐसी है, ये बनाया गया इसीलिए। ये शरीर जो भौतिक संसार में इसी तरह से बनाया गया है कि जैसे एक कैमरा है, इसका इसमें जो इसकी सिस्टम डाले गए होंगे वो काम करेंगे ही। इसी तरह से ब्रह्मा जी के द्वारा ये जो शरीर बनाया गया है इसमें 10 इंद्रियां दी गई है, 10 इंद्रियों के साथ उनकी इंद्रिय तृप्ति करने की जो भावना डाली गई है वो सूक्ष्म इंद्रियां जिन्हें कहते हैं बस। तो कोई समझे कि नहीं मैं आंखों से बड़ा अच्छा अच्छा देख के स्विट्जरलैंड घूम के आ जाऊंगा तो मैं खुश बस आत्मतृप्त हो जाऊंगा, कभी नहीं होने वाला, भूल जाइए। या मैं अमेरिका जाके भक्ति करूंगा तो शायद मैं बहुत, कभी नहीं होने वाला। इसलिए करना क्या है, करना वही है जो नारद मुनि जी बताएंगे। इन सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना है, क्योंकि केवल भगवान की सेवा में लगने के बाद ही जो हम जीवात्मा, जो कि राजा बताया गया, इसमें बताया गया ना राजा, कि प्रत्येक व्यक्ति शरीर का राजा है, आप भी राजा हैं, आप भी राजा हैं। कैसे राजा हैं? क्योंकि हम अपनी इच्छा से इन इंद्रियों का इस्तेमाल करना चाहते हैं, प्रसन्न होने के लिए, खुशी प्राप्त करने के लिए, आनंद होने के लिए, क्योंकि हमारा स्वरूप है, भगवान के हम अंश हैं। जैसे भगवान आनंद में रहना चाहते हैं, हम भी आनंद में रहना चाहते हैं, ये नेचुरल है, गलत नहीं है। लेकिन आनंद की खोज गलत जगह ढूंढ रहे हैं, ये इस अध्याय बताता है बड़े वैज्ञानिक तरीके से, कैसे आंखें हैं, कैसे आंख हैं, अभी और भी आएगा, इसमें इतने द्वार हैं। से समझने का क्या मतलब है? समझने का अर्थ यही है कि आप किसी भी तरीके से देख ले, इंद्रियों की तृप्ति अगर हम करते रहेंगे अपनी प्रसन्नता के लिए, कई जीवन बीत जाएंगे, कभी भी सफलता नहीं मिलेगी, कभी भी ऐसा दिन नहीं आएगा कि ये इंद्रिय कहेंगी आ हा हा अब मैं बिल्कुल संतुष्ट हूं। कभी भी ऐसा दिन नहीं आएगा। तो समझदार व्यक्ति जो होता है, जब इन शास्त्रों को सुनता है तो वो सोचता है नहीं है, क्योंकि आप देख सकते हैं हमारे जीवन में भी या अपने आसपास के लोगों के जीवन में भी। मुझे याद है कि जब हम कृष्ण भावनामृत संघ दिल्ली में जुड़े थे, इस्कॉन दिल्ली से, जब अक्सर सभी भक्तों का ये रियलाइजेशन होगा या साक्षात्कार होगा या देखा होगा कि इस तरह से होता है, जब हमने धोती कुर्ता पहनना शुरू करा तो हमारे आसपास के खासकर जो बुजुर्ग लोग थे वो लोग बड़े परेशान हुए, अरे ये क्या पंडित जी बन रहा तुम? खासकर जब युवावस्था में आप इस तरह से व्यवहार करते हैं तो बड़े परेशानी हो जाती है, क्योंकि हमने तो किया नहीं अभी तक, ये कैसे करने लग गया, उसमें अहंकार आ जाता है, अरे पंडित जी बनने लग गया। तो अब वहां पे भक्तों का संघ था, वो समझाते थे कोई बात नहीं तुम करते रहो करते रहो, तो लगे रहे हम किसी तरह, अभी भी कोशिश कर रहे हैं। तो एक बार एक माता जी से मेरी बात हो रही थी, अभी वो दादी माँ बन गई है, तो वो 2 पुत्रों की माता थी। मैंने कहा आप शुरू कर दीजिए, कम से कम दो माला शुरू कर दीजिए। कहती नहीं, जब मैं बूढ़ी हो जाऊंगी तब करूंगी, अभी क्या जरूरत है, तुम करो अभी, ठीक है। तो मैं आप जब कभी कभी जाता हूं मिलने के लिए, क्योंकि घर मंदिर के बिल्कुल पास था, तो उनके पास जाता हूं, वो दादी माँ बन गए, दादी के बच्चे भी काफी, मतलब बच्चों के बच्चे भी काफी बड़े हो गए हैं, तो अब उनसे पूछता हूं आप कर लीजिए, अब उनके पास कोई उत्तर नहीं देता, अब नहीं बोल सकती ना, कुछ नहीं बोलती, लेकिन जब करना शुरू नहीं करा। तो ऐसा कभी भी नहीं होता कि हम इंद्रियों की सेवा करते रहे और हम भक्ति में लगेंगे, नहीं। एक बहुत अच्छे हमारे आचार्य गण हैं, वो तो इस बारे में बहुत लिखते हैं, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, वो उनके बंगाली में वो हैं, वो कहते हैं ये इंद्रियां तो एक प्रोस्टिट्यूट की तरह है, प्रोस्टिट्यूट समझते हैं ना, वेश्या की तरह है। प्रोस्टिट्यूट के पास व्यक्ति जाता है, अपना आनंद भोग लेता है, तो वो उसको पैसे देकर चला जाता है, तो वो वेश्या कहते हैं संतुष्ट नहीं, वेश्या संतुष्ट नहीं होती, उसे और भी लोग चाहिए, और भी लोग चाहिए, और भी लोग चाहिए। तो इंद्रियां ऐसी हैं, हम समझते हैं कि इंद्रियों की सेवा करते रहेंगे और बहुत इन संसार में इसकी सेवा करो उसकी सेवा करो कि वो खुश हो जाएंगे, आज तक कोई खुश नहीं हुआ। जब तक कृष्ण भक्ति हमारे जीवन में नहीं आएगी हम संतुष्ट नहीं हो सकते और दूसरों को भी संतुष्ट नहीं कर सकते, ये पुरंजन आख्यान में समझना चाहिए। शास्त्रों में विश्वास होना चाहिए। कितने अच्छे तरीके से समझा रहे नारद जी, 5000 साल पहले तो लिखा गया था, उससे पहले के हैं शास्त्र। अर्जुन ने बोला था ना, आपको कैसे पता ये, भगवान ने बोला मैंने ये ज्ञान सूर्यदेव के दुर्गा विवस्वान को दिया था, ये कोई भगवदगीता ज्ञान अभी से थोड़ी है कोई, ये तो अनंत काल से है। हमें समझना चाहिए कि एक एक शब्द जो है इसमें बहुत महत्वपूर्ण है। केवल खाद्योता अवर मुखी लिख देने का मतलब क्या, क्यों लिखा गया खाद्योता अवर मुखी, हम जैसे कंडीशन को समझाने के लिए, जो बद्ध जीव है समझाने के लिए। और फिर इंद्रियों को, जो हमारी इंद्रियां हमें अब मिल गई हैं, अब क्या करें, इस शरीर में तो डाल दिया गया हमें हमारे किसी भी कारण से, तो क्या कारण है वो समझने की भी जरूरत नहीं है। अब भाग कैसे निकलना ये समझना, वो भागवत समझाते हैं, भगवदगीता समझाती है, सारे आचार्यगण समझाते हैं, खेल प्रभुपाद जी आके समझाते हैं, और हमारे अनुसार फिर इन शास्त्रों को लिखते हैं, समझाते हैं कि कैसे दोनों आंखें एक ही स्थान पर रखी गई हैं, फिर भी एक से कम दिखता है दूसरे से ज्यादा दिखता है, क्यों लिख रहे हैं वो हमें समझाने के लिए। तो देखिए, इट्स नॉट अ मैथोलॉजी, आपके दिमाग में मैथोलॉजी है, आपको नहीं समझ आ रही, नहीं आ रही तो ठीक है जब कीजिए, मन और बुद्धि तब होगा शुभ, तब बातें समझ में आएंगी। कई बातें हमें जब हमने भक्ति शुरू करी थी नहीं समझ आती थी, अब समझ आई है, अभी भी कई बातें ऐसी जो लगता है नहीं कैसे आएंगी, वो भी बस पथ पे बने रहना, उत्साह निश्चय धैर्य तीनों चीजों के साथ लगेगी, करते रहना, भक्तों के संग में रहना, क्योंकि भक्तों के संग से अगर हम बाहर गए तो वहां तो बहुत ही संसार में आपको बहुत सारी ऐसी चीजें तो बड़े आराम से आपको विश्वास दिला देंगे कि भक्ति करना कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, सारा संसार इसी उसी में लगा हुआ है कि हम तुम्हें आनंद देंगे, सारी बड़ी बड़ी कंपनियां आज आप ये वाला एसी लगा लो, आप एयर कंडीशन कर लोगे, हवा को अपने नियंत्रण में कर लोगे, राजा बन जाओगे, नाउ आई कैन कंडीशन द एयर, आई हैव एयर कंडीशन। लेकिन एयर कंडीशन में रहते हुए भी शांति प्राप्त होगी नहीं होगी पता नहीं, उसकी कोई गारंटी नहीं। अभी हम दिल्ली जा रहे थे एक भक्त के साथ, तो मैं उसका उदाहरण दे रहा हूं कि उन्होंने बोला कि नाउ वी कैन बिकम पीसफुल गो टू दिल्ली, क्योंकि हमारे पास एक अच्छी गाड़ी है, ये है वो है। तो मेरे मन में ये बात है, मैंने कहा शांति आएगी कि नहीं आएगी, हाँ कंफर्ट जरूर आ गया है, मतलब आराम तो आ गया है, लेकिन पीसफुलनेस आएगी कि नहीं आएगी ये जरूरी नहीं है, ऐसे ही बोल दिया। जब हम वापिस आ रहे थे तो उसी गाड़ी में झगड़ा हो रहा था उसी गाड़ी में एसी भी चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, लेकिन शांति नहीं है, अब कंफर्ट भी गायब हो गया तो बहुत ही संसार ऐसा है। तो अगर हम चाहते हैं इन बातों को समझ के जीवन में अगर हम उतारेंगे और समझेंगे कि सारी इंद्रियों को भगवान कृष्ण की सेवा में लगाना है, चैतन्य महाप्रभु की सेवा में लगाना है, नित्यानंद प्रभु की सेवा में लगाना है, उनकी प्रसन्नता के लिए अगर हम ये करेंगे, तब हमारी जो इंद्रियों का जो ये जो हमें बॉडी या शरीर जब मिला इसका कार्य सफल होगा, वरना इससे अगला हमें और शरीर मिलेंगे हमारे कर्मों के अनुसार।